नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। स्वयं की शरण लेना। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोहि नाथो परोसिया अत्तना ही सुदंते न नाथम लभति दुर्लभम। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी होता है, भला दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है। अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्थायित्व प्राप्त होता है। धम्मपद गाथा 160। कुमार काश्यप तथा उनकी माँ की कथा। यह गाथा कुमार काश्यप की माँ के संदर्भ में कही गई थी। कुमार काश्यप की माँ राजगह आधुनिक राजगीर नगर में एक कोषाध्यक्ष की पुत्री थी। स्वयं एक भिक्षुणी बनने के लिए उसने अपने माता पिता से विनती की, किंतु उन्होंने मना कर दिया। जब उसकी आयु हो गई तो उन्होंने उसकी एक योग्य पति से विवाह कर दिया, किंतु उसने अपने पति को मना लिया कि वह उसे भिक्षुणी बनने के लिए अनुमति दे। जब वह भिक्षुणी बनी तब उसे पता नहीं था कि वह गर्भवती थी। वे देवदत्त के, जिन्होंने बुद्ध से संबंध तोड़ लिया था, भिक्षुणी संघ में भिक्षुणी बनी। जब यह प्रकट हो गया कि वे गर्भवती हैं तो भिक्षुणियां सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। देवदत्त ने अपनी आलोचना के भय से उन्हें निष्कासित करने के लिए कहा, किंतु उन्हें बुद्ध में आस्था थी तथा वे बोली कि उन्हें बुद्ध के पास ले जाया जाए। बुद्ध समझ गए कि वे भिक्षुणी बनने से पहले ही गर्भवती हो गई थी, अतः तिरस्कार से परे थी। परंतु अन्य लोगों के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने चार अग्रणी गृहस्थ शिष्यों अर्थात कौशल के राजा पसे नदी, महा अनाथ पिंडिक, चुल्ल अनाथ पिंडिक तथा माँ विशाखा को बुला भेजा और नियमों में अग्रणी स्थविर उपाली को युवा महिला के विरुद्ध उठाए गए आरोप की जांच का आदेश दिया। माँ विशाखा ने निर्धारित कर दिया कि वह संघ में सम्मिलित होने के पहले ही गर्भवती हुई थी, अतः वह भिक्षुणी बनी रही तथा समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन जब राजा भिक्षुणी समुदाय के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस शिशु के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इस विषय में पूछा तो उन्हें बताया गया कि किसी भिक्षुणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उन्होंने उस शिशु को गोद ले लिया तथा उसे कुमार काश्यप नाम दिया। बाद में एक दिन ऐसा आया कि कुमार काश्यप के सखा उनका उपहास करने लगे कि उनके कोई माता पिता नहीं थे। उन्होंने राजा से पूछा कि इसका क्या अर्थ है, उनकी माँ कौन है। राजा ने अपनी बेटियों की ओर, जिन्होंने कुमार का पालन पोषण किया था, इशारा किया और कहा, ये तुम्हारी माएँ हैं। किंतु बालक जानता था कि उसकी केवल एक ही माँ होनी चाहिए। अंत में राजा ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही उन्हें सत्य का पता चला, उनकी इच्छा संसार से संन्यास लेकर एक भिक्षु बनने की हुई। कुमार काश्यप ने प्रव्रज्ञा ली तथा उन्हें एक ध्यान के लिए विषय दिया गया एवं अंत में वे उस लक्ष्य तक पहुंच गए जिसके लिए वे 100,000 कल्पों से काम कर रहे थे। किंतु उनकी माँ में अपने पुत्र के प्रति इतनी अधिक अनुरक्ति थी कि वे 12 वर्षों तक रोती बिलखती रही। जब वे अरहत हो गए तो एक दिन किसी गली में उन्हें देखा। वे उनके पास विलाप करती हुई दौड़ कर गई, मेरे बेटे मेरे बेटे। वे उनके पैरों पर गिर पड़ी तथा उनके स्तन से दूध प्रवाहित होने लगा। कुमार काश्यप ने सोचा, यदि मैं इनसे प्रेम से बोलता हूँ तो उससे इनकी हानि होगी, अतः मुझे इनसे बड़ी दृढ़ता से बात करनी होगी। अतः वे उनसे बोले, आप क्या कर रही हैं? क्या आप मानवीय स्नेह की भावुकता से छुटकारा नहीं पा सकती? इससे उन्हें वह झटका लगा जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, तथा उन्होंने सोचा, इसके कारण मैं 12 वर्षों तक अपने आंसुओं को रोक न सकी, किंतु इसने मेरे प्रति अपना हृदय कठोर कर लिया है, मेरा अब इससे क्या लेना देना। तथा अपने पुत्र के प्रति आसक्ति समाप्त करने के माध्यम से वे आगे प्रयास कर सकें एवं अर्हत्व प्राप्त करने में सक्षम हुई। कुछ समय बाद भिक्खु इस घटना की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, देवदत्त के कारण कुमार काश्यप का, जिन्होंने जागृति प्राप्त करने की सभी तैयारी कर ली थी, विनाश होने वाला था, तथा उनकी माँ के साथ भी वही होने वाला था, किंतु तथागत ने उनको अपनी शरण दी। विश्व के लिए बुद्धों की करुणा कितनी महान है। बुद्ध ने भिक्खुओं को स्पष्ट किया कि यह पहली बार नहीं था जब कुमार काश्यप तथा उनकी माँ को उन्होंने अपनी शरण में लिया था। अपने पुत्र के प्रति अपने स्नेह को निकाल फेंकने के लिए तथा स्वयं को स्वयं की शरण में स्थापित करने के लिए उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए वह गाथा कही जिससे हमने यह प्रवचन प्रारंभ किया है। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदंते न नाथम लभति दुर्लभम। मनुष्य स्वयं अपना स्वामी होता है, भला दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है। अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्थायित्व प्राप्त होता है। जागृति के सात कारक। अब हम जागृति के सात कारकों अर्थात बोध्यंगों की चर्चा करते हैं। जागृति के कारक के लिए पाली शब्द बोध्यंग है। यह बोधि शब्द जिसका अर्थ है जागृति या निर्वाण, तथा अंग शब्द जिसका अर्थ है घटक या कारक से बनता है। एक समय जब भगवान बुद्ध गिलहरियों के खिलाने के स्थान बांस के कुंज अर्थात वेलु वन में विहार कर रहे थे, तो महाकाश्यप पिप्पली गुहा में रह रहे थे और गंभीर रूप से रोग से पीड़ित थे। भगवंत उनके पास गए, अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठे तथा महाकाश्यप से बोले, तो काश्यप आप कैसे हैं? क्या आप सहन कर पा रहे हैं? क्या आपकी पीड़ा कम हो रही है या बढ़ रही है? क्या आपकी पीड़ा के संकेत घट रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं? महाकाश्यप ने प्रतिवचन दिया, नहीं भगवंत, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, पीड़ा अत्यधिक है, पीड़ा के संकेत कम नहीं अपितु बढ़ रहे हैं। तब बुद्ध ने उनसे कहा, काश्यप, जागृति के सात कारकों को मैंने अच्छी तरह उगाया, विकसित किया तथा स्पष्ट किया है। जब ये अच्छी तरह उगाए एवं विकसित किए जाते हैं तो वे पूर्ण जागृति, समुचित प्रज्ञा या निर्वाण के लिए प्रेरित करते हैं। आगे बुद्ध सात कारकों को बताते हैं। एक, स्मृति, पाली में सति, अर्थात सभी शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता। दो, सभी धर्मों अर्थात सभी घटनाओं या प्रक्रियाओं की सही प्रकृति का अपने ज्ञान के माध्यम से अन्वेषण या जांच, पाली में धम्म विचाय। तीन, ऊर्जा या वीर्य, पाली में वीर्य, अर्थात अंत तक दृढ़ संकल्प के साथ काम करते रहना। चार, प्रसन्नता, आह्लाद या प्रीति, पाली में प्रीति, जो कि मन की निराशावादी, उदास या अवसादपूर्ण दृष्टिकोण के विपरीत की गुणवत्ता है। पांच, मन एवं शरीर दोनों की शांति, पाली में पसद्धि। छह, एकाग्रता या समाधि, तथा सात, समभाव या उपेक्षा, पाली में उपेक्षा, अर्थात उस स्तर को प्राप्त करना जिसमें शारीरिक तथा मानसिक प्रयास की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बुद्ध ने जागृति के सात कारकों को बताना समाप्त किया तो तो महाकाश्यप बोले, सच में प्रभु ये ही जागृति के कारक हैं। आनंदित होते हुए उन्होंने बुद्ध के वचनों का स्वागत किया तथा वे अपने रोग से बाहर निकले। उनकी बीमारी उसी क्षण विलुप्त हो गई। बाह्य दारुचीरिय की कथा। सहस्रम अपिचे गाथा अनर्थ पद संहिता, एकम गाथा पदम से यो यम सुत्वा उपसम्मति। निरर्थक पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं की अपेक्षा वह एक अकेला सार्थक गाथा पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। धम्मपद गाथा 101। बुद्ध द्वारा प्रशिक्षण के समय बाह्य दारुचीर्य कम से कम समय में जागृत होने वाले व्यक्ति थे। 1,00,000 कल्प पूर्व वे उस समय विद्यमान थे जब पद्मोत्तर बुद्ध ने तात्कालिक बोध में अग्रणी भिक्षु को इंगित किया था। बाह्य दारुचीर्य ने एक दिन वही पद प्राप्त करने के लिए अपनी अभिलाषा व्यक्त की तथा पद्मोत्तर बुद्ध ने निश्चित भविष्यवाणी की कि 1,00,000 कल्प के बाद गौतम बुद्ध के समय वह यह पद अवश्य प्राप्त करेंगे। गौतम बुद्ध के पूर्व अंतिम बुद्ध काश्यप बुद्ध के प्रशिक्षण के समय बाह्य दारुचीर्य कुमार काश्यप से जुड़े थे। काश्यप बुद्ध की शिक्षा का ह्रास होना प्रारंभ हो गया था तथा वे दोनों 7 भिक्षुओं के समूह में थे जिन्होंने अधिकतम प्रयास करने का निर्णय लिया। वे एक पर्वत पर चढ़ गए जो इतना ऊंचा तथा सीधे खड़ा था कि उसके शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ा। जब वे शीर्ष पर पहुंच गए तो उन्होंने सीढ़ी नीचे फेंक दी, जिससे वे अर्हत्व प्राप्त करने के पहले शिखर न छोड़ सके। उनके अगुआ पूरी तरह जागृत हो गए तथा दूसरे भिक्षु ने जागृत का 3रा चरण प्राप्त किया, किंतु अन्य 5 भिक्षुओं का पर्वत पर ही 7 दिन के बाद ध्यान मग्न मुद्रा में निधन हो गया। उन सभी 5 का पुनर्जन्म गौतम बुद्ध के समय हुआ तथा उनमें से 1 कुमार काश्यप एवं 1 बाह्य दारुचीर्य थे। अन्य 3 थे दब मल्लपुत्र, सभीय तथा पुकुसा थी, जिनकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बाह्य दारुचीर्य एक व्यापारी परिवार में उत्पन्न हुए थे तथा उन्होंने सिंधु नदी से 7 बार व्यापारिक यात्रा की थी। 8वीं यात्रा पर सुवर्ण भूमि के लिए जाते समय उनकी जहाज मार्ग में ही पलटकर फंस गई तथा वे बहकर अंततः किसी तट पर वस्त्र विहीन पहुंचे। वे छाल और टहनियों से स्वयं को ढककर भिक्षा मांग कर रहने लगे। लोग उन्हें एक महान तपस्वी समझकर विशेष सम्मान के साथ अरहत शीर्षक से संबोधित करने लगे। अंततः स्वयं बाह्य को भी विश्वास हो गया कि वे पूरी तरह जागृत हो गए हैं। तब जो भिक्षु पूर्व जन्म में पर्वत पर जागृति के 3रे चरण को प्राप्त कर चुके थे, उनका पुनर्जन्म उच्च लोक में हुआ था तथा उन्हें ज्ञात हो गया कि उनके पूर्व मित्र बाह्य भ्रमित होकर भटक रहे हैं। उन्होंने उन्हें सीधे मार्ग पर लाने का निर्णय लिया तथा 1 रात वे उन्हें दिखाई पड़े। उन्होंने बाह्य से कहा कि उन्होंने अभी जागृति नहीं प्राप्त की है तथा अभी तो वे उस मार्ग पर भी नहीं है जो जागृत की ओर ले जाता है। उन्होंने बाह्य को बताया कि इस विश्व में एक बुद्ध विद्यमान है। इस समाचार से कि एक बुद्ध है, बाह्य इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने तत्काल प्रस्थान कर दिया। यद्यपि अभी अर्धरात्रि ही थी, वे अति प्रातः श्रावस्ती पहुंचे। जब वे बिहार में गए तो लोगों ने उनको बताया कि बुद्ध तो भिक्षाटन के लिए निकल पड़े हैं तथा अब उन्हें विश्राम कर बुद्ध के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, किंतु बाह्य प्रतीक्षा नहीं कर सके। वे नगर की गलियों में बुद्ध की तलाश में निकल पड़े। अंततः उन्हें बुद्ध मिल गए तो वे उनके चरणों पर गिर पड़े तथा बुद्ध के टखनों को पकड़ लिया। उन्होंने बुद्ध से शिक्षा के लिए अनुरोध किया, किंतु बुद्ध को लगा कि बुद्ध को पाकर बाह्य दारुचीर्य इतने गदगद हो गए थे कि बुद्ध की शिक्षाओं को समझने तथा पालन करने में सक्षम होने के लिए उनके चित्त में पर्याप्त शांति नहीं थी। प्रशिक्षण के लिए बाह्य का अनुरोध बुद्ध ने दो बार अस्वीकार कर दिया, जिससे बाह्य को शांत होने के लिए समय मिल सके। फिर तीसरी बार बाह्य ने बुद्ध से कहा कि जीवन अनिश्चित है तथा वह जल्द ही मर सकता है। बुद्ध ने देखा कि वास्तव में बाह्य उसी प्रातः मर जाएगा, अतः बुद्ध ने बाह्य को वहीं उसी समय यह कहकर शिक्षा दी, बाह्य तुम्हारे लिए दृश्य में दृश्य मात्र होगा, श्रवण में श्रवण मात्र होगा, विचार में तुम्हारे लिए मात्र विचार होगा, जानने में तुम्हारे लिए केवल जानना होगा। इस प्रकार बुद्ध ने स्मरण दिलाया कि ये केवल इंद्रियों के कार्य हैं, किंतु इनके पीछे कोई आत्मा अहंग या स्थायी कर्ता नहीं है। बाह्य को जिन्होंने इतने लंबे समय तक अपने मन को तैयार किया था, तत्क्षण सत्य का अनुभव हुआ तथा वे सभी लोभ द्वेष एवं मोह से मुक्त अरहतों में से एक हो गए। बाह्य ने भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने के लिए अनुरोध किया, तथापि बुद्ध ने कहा कि पहले वह आवश्यक चीवर तथा अन्य अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त करे। जब किसी व्यक्ति में अपेक्षित पारमी होती है तथा वह भिक्षु बनने की इच्छा व्यक्त करता है, तो बुद्ध केवल आओ भिक्षु यही भिक्षु कहकर संघ में स्वीकार कर सकते हैं। किंतु बुद्ध जानते थे कि यद्यपि बाह्य की अन्य पारमिताएं पूरी तरह विकसित हो गई थी, किंतु उसने भिक्षुओं को चीवर तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दान देकर उनकी कभी सहायता नहीं की थी। अतः उसने स्वयं के भिक्षु बनने के लिए तैयारी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त किसी पिछले जन्म में वह एक डाकू था, जिसने एक प्रत्येक बुद्ध पाली में पच्चेक बुद्ध की हत्या कर उनके चीवर को स्वयं के उपयोग के लिए ले लिया था। अतः बुद्ध ने बाह्य से कहा कि यदि वह एक भिक्षु बनने के लिए प्रव्रज्ञा लेना चाहता है तो उसे चीवर तथा अन्य अपेक्षित वस्तुएं जुटानी होंगी। जब बाह्य इन वस्तुओं की तलाश में थे तो वे एक पागल गाय द्वारा मारे गए। भिक्षाटन के पश्चात जब बुद्ध तथा अन्य भिक्षु वापस विहार की ओर लौट रहे थे तो विहार के निकट एक कूड़े के ढेर पर एक शव मिला। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि उस शव का दाह संस्कार कर उसके अवशेषों पर एक स्तूप बना दें। उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया तथा तत्पश्चात उन्होंने मृत व्यक्ति के भविष्य की स्थिति के विषय में बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि वे अरहत्व प्राप्त कर चुके थे। भिक्षुओं ने कहा, किंतु कब? आज, जब मैंने उन्हें भिक्षाटन के समय शिक्षा दी। इस बात से आश्चर्यचकित होकर कि इतने कम समय में भी कोई अरहत्व प्राप्त कर सकता है, उन्होंने पूछा, परंतु वह तो अत्यंत ही अल्प प्रवचन था ना? तब बुद्ध ने उसका उत्तर उस गाथा के साथ दिया जिसे हमने इस कथा के प्रारंभ में उद्धृत किया है। सहस्रम अपि चेगाथा अनथ पद संहिता एकम गाथा पदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। निरर्थक पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं की अपेक्षा एक गाथा पद श्रेयस्कर होता है, जिसे सुनकर व्यक्ति शांत हो जाता है। उस संध्या को बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि 1,00,000 कल्प पूर्व जब पुत्र बुद्ध ने एक भिक्षु को तात्कालिक बोध में अग्रणी घोषित किया था तो बाह्य दारुचीरिय ने यह आकांक्षा की थी कि वह भी तात्कालिक बोध में सर्वोपरि हो। महाशिव की कथा। बुद्ध के जीवन काल में अर्हत्व प्राप्त करने के लिए सबसे लंबा समय लेने वाले व्यक्ति महाशिव पाली में महाशिव थे। वे एक अत्यंत विद्वान भिक्षु थे जो भिक्षुओं की समस्याओं का सही समाधान करने में तथा भिक्षुओं के प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसिद्ध थे। महाशिव ने सहस्रों भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया तथा उनके शिष्यों में से 30,000 ने अरहत्व प्राप्त किया था। एक दिन उनके एक शिष्य ने, जो अरहत पाली में अरहत हो गए थे, अपनी उपलब्धियों की समीक्षा की जो इतनी महान थी तथा उसके बाद अपने आचार्य की उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि उनके आचार्य अभी भी एक साधारण व्यक्ति थे तथा जागृति नहीं प्राप्त की थी। शिष्य ने अपने आप से पूछा कि क्या महाशिव स्वयं पर निर्भर कर सकते हैं, अर्थात क्या उन्हें जागृति प्राप्त करने का आश्वासन मिल चुका है। उन्हें ज्ञात हुआ कि महाशिव उस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। अपने अगले जन्म में उनका पुनर्जन्म निम्न लोकों समेत किसी भी लोक में हो सकता है। अतः उस शिष्य ने अपने आचार्य को एक संकेत देने का तथा उन्हें अंतिम मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। शिष्य ने पारलौकिक शक्तियां विकसित की थी, अतः वे वायु मार्ग से अपने आचार्य के पास पहुंचने में सक्षम थे। वे वहां नीचे उतरे जहां महाशिव अपने दिन के कक्ष में थे। वे महाशिव के निकट आए, उनका अभिवादन किया तथा एक ओर बैठ गए। महाशिव ने प्यार से उनका स्वागत किया। शिष्य ने सम्मानपूर्वक अपने आचार्य को संबोधित किया। भंते, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। किंतु महाशिव ने कहा, मैं तुम्हें साक्षात्कार नहीं दे सकूँगा, मेरे सभी समय का आवंटन हो गया है। अतः शिष्य ने महाशिव के कार्यक्रम के विषय में पूछना प्रारंभ किया, जिससे कि वह कहीं किसी खाली समय का पता लगा सके। वह समय कैसा रहेगा जब आप खड़े होकर विचार कर रहे हों कि आपको भिक्षा के लिए कहाँ जाना है? उनका उत्तर था, वह समय तो पहले से ही दिया जा चुका है। शिष्य ने पूछना जारी रखा, वह समय कैसा रहेगा जब आप भिक्षा के लिए मार्ग पर हों? उत्तर आया, पहले से ही आवंटित। वह समय कैसा रहेगा जब आप चीवर पहन रहे हों या नगर से वापस आ रहे हों या अपना भोजन कर रहे हों या भोजन के बाद सफाई कर रहे हों? किंतु सबके सब ये समय उन छात्रों को पहले से ही आवंटित किए जा चुके थे जो आचार्य से शिक्षा संबंधी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहते थे। महाशिव ने कहा, देखो, ये भिक्षु दिन भर अनेक समस्याओं के साथ आते हैं। अब से लेकर उषा काल तक एक पल भी रिक्त नहीं है, किंतु अरहत शिष्य डटे रहे तो भोर के पश्चात जब वे अपने दांत साफ कर रहे हों कैसा रहेगा? संभव नहीं। जब वे अपना मुखमंडल धो रहे हों? प्रत्येक बार उत्तर था, नहीं। तब शिष्य ने कहा, यदि आप इतने व्यस्त हैं तो क्या आपको अपनी अंतिम सांस लेने के लिए भी समय मिल पाएगा? आप तो एक कुर्सी की पीठ के समान हैं, जो दूसरों को सहारा तो देती है किंतु स्वयं को नहीं। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका निम्न लोकों में पुनर्जन्म नहीं होगा? वास्तव में मेरी स्वयं की कोई समस्या नहीं है जिसे मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। मैं तो बस आपको एक स्मरण दिलाने के लिए आया था। तथा तब वे शिष्य एक उच्च मनोस्थिति में अर्थात समाधि में प्रवेश कर वायु के माध्यम से उड़ गए। महाशिव को लगा कि उनके शिष्य का कथन सत्य है। बुद्ध ने कहा है कि जो भिक्षु शास्त्रों को तो जानता है तथा उनकी शिक्षा देता है, किंतु उनके अभ्यास से उत्पन्न आनंद नहीं प्राप्त करता। वह एक ऐसे ग्वाले के समान है जो अन्य लोगों के मवेशियों की देखभाल तो करता है, परंतु पशु के दूध का आनंद नहीं ले पाता। महाशिव ने अपने मन में सोचा, किंतु यहाँ से जाने का यह उचित समय नहीं है। मैं अपनी आवश्यक वस्तुएं लेकर कल प्रस्थान करूँगा। अतः उन्होंने अपनी आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की तथा रात भर शिक्षा देते रहे। भोर में जब उन्होंने एक समूह के अंतिम छात्र को शिक्षा देनी समाप्त की, तब उसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया। महाशिव ने पहले दृढ़ प्रयास नहीं किया था, क्योंकि वे सोचते थे, मैंने इन तमाम छात्रों को शिक्षित किया है जो अरहत हो गए हैं, मुझे वह पद प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा, मैं यह दो एक दिनों में ही कर लूंगा। अतः उन्होंने यह सोचते हुए कि वे अति शीघ्र ही वापस आ जाएंगे, किसी को भी सूचित किए बिना, जैसा कि वे सामान्यतया करते, प्रस्थान कर दिया। महाशिव एक गांव के निकट एक गुफा में गए तथा दिन भर विपस्सना का अभ्यास करते रहे, लेकिन उन्हें निब्बान नहीं प्राप्त हुआ। अतः वे लगे रहे। पूर्णिमा आ गई, परंतु अभी भी वे अरहत नहीं हुए। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया, मैंने सोचा था कि मुझे यह पद दो या तीन दिन में प्राप्त हो जाएगा, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सका। अब तो 3 महीने की वर्षा ऋतु भी समाप्त हो चुकी है, किंतु मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूँ। वे अत्यंत निराश थे कि वे भिक्षुओं के वर्षावास की समाप्ति के प्रतीक महाप्रवारणा, पाली में महापवारणा समारोह पर भी वापस नहीं जा सके। अतः उन्होंने निर्णय लिया, मैं लेटते हुए, बैठते हुए, खड़े होते हुए तथा चलते हुए, अर्थात चारों मुद्राओं में साधना करता रहा हूँ, तथापि मैं निब्बान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सका। अब से मैं लेटूंगा नहीं। तथा उन्होंने अपनी खाट दीवार के सहारे खड़ी कर दी। फिर भी वे प्रगति नहीं कर पाए थे। अतः उन्होंने तय किया कि अपने प्रयास से समय न गंवाने के लिए अब वे स्नान या पांव प्रक्षालन में भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। किंतु वर्ष बीतते गए और महाशिव अभी भी अरहत नहीं हुए थे। जब महापवारणा समारोह का 30वां अवसर आया तो अंत में वे बिखर पड़े और रोने सिसकने लगे। जब वे कुछ शांत हुए तो उन्होंने निकट में ही किसी और को रोते हुए सुना। कौन रो रहा है, उन्होंने पूछा। उत्तर आया, मैं इस वन का ईष्ट देव हूँ, मैं आपका अवलोकन करता रहा हूँ एवं आप जो करते हैं उसका अनुसरण करता हूँ, क्योंकि मैं भी जागृति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि आज आपने अपनी विधा परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, अतः मुझे भी संभवतः अपनी तकनीक बदलनी चाहिए। जब महाशिव ने यह सुना तो उनका गर्व चूर चूर हो गया तथा उन्हें अति लज्जा का अनुभव हुआ। सयाजी उबाखी ने कहा है कि महाशिव के भीतर अत्यधिक अभिमान था। महाशिव ने सोचा था, मैं निब्बान प्राप्त करूंगा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा। उनके भीतर अत्यधिक अहम था। वे इतने तनाव में थे कि वे समाधिस्थ नहीं हो पाते थे। सयाजी उबाखी ने कहा है, जब प्रयास अत्यधिक हो जाता है तब आप गर्वान्वित होते हैं तथा इससे मन भटकने लगता है। साधना करते समय इसका ध्यान रखें। जकड़ कर मुट्ठी बांधने या दांत पीसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उल्लासपूर्ण सरलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको सजग एवं सतर्क होना चाहिए, किंतु तनाव रहित भी। अतः महाशिव का गर्व उस देवता के कारण दूर हुआ। वे समझ गए कि वह उनका उपहास कर रहा था। उन्होंने सोचा कि एक वर देवता द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उनके लिए एक शर्म की बात है, तथा तब उन्होंने संतुलित और सही प्रयास किया। उन्होंने चार गुनी विश्लेषणात्मक शक्तियों के साथ अरहत्व प्राप्त किया। तब उन्होंने अपने कक्ष की सफाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने निवास स्थान में झाड़ू लगाया तथा पेय जल एवं स्नान के लिए जल से जल पात्रों को भरा, खाट नीचे उतारी और विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं एक लंबे समय से बिना पैर धोए रह रहा हूँ, क्यों न मैं अपना पैर धो लूं। उनके जो 30,000 शिष्य अरहत थे, वे सभी उनकी प्रगति पर दृष्टि रखे हुए थे। उस समय वे उनके चित्त का निरीक्षण कर रहे थे और उन्हें ज्ञात हो गया कि अब वे एक अरहत हो गए थे तथा वे अपने पैर धोने की तैयारी कर रहे थे। वायु मार्ग से वे सभी महाशिव के स्थान पर पहुँचे। उन्होंने उनका अभिवादन किया तथा बोले, हम आपके प्रत प्रक्षालन के लिए आए हैं। आज प्रभात मात्र इतना ही। भवतु सब मंगलम, रक्खन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्खन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्खन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।